नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9 Nut Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, कैरेक्टर लिमिट। हाउ इलॉन मस्क डिस्ट्रॉयड ट्विटर, न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रौद्योगिकी पत्रकारों केट कॉन्गर और रायन मैक की रिपोर्टिंग पर आधारित गैर कथा पुस्तक है। यह जनवरी 2022 में मस्क द्वारा ट्विटर के शेयर चुपचाप खरीदने से शुरू होकर $44 अरब के अधिग्रहण, कानूनी टकराव और कंपनी के भीतर हुए तेज बदलावों तक की पड़ताल करती है। पुस्तक का विषय केवल एक प्रसिद्ध उद्यमी का कॉर्पोरेट सौदा नहीं है। इसका केंद्रीय प्रश्न यह है कि वैश्विक सार्वजनिक संवाद के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल मंच का नियंत्रण जब एक अत्यंत शक्तिशाली मालिक के हाथ में आता है, तो कर्मचारियों, नीतियों, उपयोगकर्ताओं और लोकतांत्रिक सूचना व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। कॉन्गर और मैक साक्षात्कारों, अप्रकाशित दस्तावेजों और आंतरिक रिकॉर्डिंग के आधार पर घटनाओं को पुनर्निर्मित करते हैं। उनका दृष्टिकोण स्पष्टतः आलोचनात्मक है, फिर भी पुस्तक वित्त, कानून, प्रबंधन और मंच शासन के परस्पर संबंधों को ठोस घटनाओं के माध्यम से समझाती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, $44 अरब का सौदा और सार्वजनिक कंपनी की सीमाएं। पुस्तक अधिग्रहण को मस्क की अचानक इच्छा भर के रूप में नहीं देखती, बल्कि सार्वजनिक कंपनी की संरचनात्मक कमजोरियों के संदर्भ में रखती है। मस्क ने जनवरी 2022 में ट्विटर में हिस्सेदारी बनानी शुरू की और अप्रैल तक सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। इसके बाद बोर्ड निवेशकों और मस्क के बीच शक्ति का असंतुलन तेजी से उबला। मस्क का प्रस्ताव असाधारण मूल्य का था, इसलिए बोर्ड के सामने शेयरधारकों के वित्तीय हित और कंपनी की दीर्घकालीन पहचान दोनों का प्रश्न था। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद मस्क का पीछे हटने का प्रयास इस कहानी को और जटिल बनाता है। ट्विटर ने सौदा पूरा कराने के लिए मुकदमा किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बड़े अधिग्रहण सार्वजनिक घोषणाओं या ऑनलाइन वक्तव्यों से संचालित नहीं होते, वे बाध्यकारी अनुबंधों और कानूनी दायित्वों से भी बंधे होते हैं। पुस्तक इस प्रकरण से बताती है कि किसी मंच की सामाजिक भूमिका विशाल हो सकती है, पर उसके निर्णायक क्षण अक्सर शेयर मूल्य, ऋण वित्त पोषण और विलय कानून से तय होते हैं। इसीलिए सौदा केवल मस्क और ट्विटर का संघर्ष नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित वाले डिजिटल मंचों पर निजी पूंजी के प्रभाव का अध्ययन बन जाता है। दूसरा, डिजिटल टाउन स्क्वायर की धारणा और मुक्त अभिव्यक्ति का संघर्ष। ट्विटर को लंबे समय से पत्रकारों, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और आम उपयोगकर्ताओं के त्वरित संवाद के मंच के रूप में देखा जाता था। पुस्तक में जैक डोर्सी की डिजिटल टाउन स्क्वायर वाली आकांक्षा और कंपनी की व्यावसायिक कठिनाइयों के बीच तनाव महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनता है। मस्क ने दावा किया कि मंच अपनी मुक्त अभिव्यक्ति की प्रतिबद्धता से भटक गया है और उन्होंने इसे उस विचार से जोड़ा जिसे वे वोक माइंड वायरस कहते थे। लेखकों की पड़ताल इस दावे को एक नीतिगत नारे के बजाय नियंत्रण की लड़ाई के हिस्से के रूप में देखती है। किसी विशाल मंच पर अभिव्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता का अर्थ केवल कम नियम नहीं होता, उसमें उत्पीड़न, गलत सूचना, घृणास्पद सामग्री, विज्ञापनदाताओं का भरोसा और कमजोर समूहों की भागीदारी जैसे प्रश्न शामिल होते हैं। सामग्री संयम को हटाना या बदलना, यह तय करता है कि कौन बोल सकता है और किस कीमत पर बोल सकता है। पुस्तक इसीलिए मुक्त अभिव्यक्ति को सरल द्वंद्व, सेंसरशिप बनाम स्वतंत्रता में सीमित नहीं करती। वह दिखाती है कि नियमों का स्वरूप, उनका लगातार लागू होना और निर्णय लेने वालों की जवाबदेही सार्वजनिक संवाद की वास्तविक गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। तीसरा, अंदरूनी उथल पुथल, कर्मचारियों की छंटनी और संस्थागत ज्ञान का नुकसान। अधिग्रहण के बाद की अवधि में पुस्तक का सबसे ठोस पक्ष कंपनी के भीतर काम करने वाले लोगों पर ध्यान है। मस्क का नेतृत्व तेज निर्णयों, व्यापक छंटनियों और कार्यस्थल की बुनियादी व्यवस्थाओं तक में कटौती से चिन्हित बताया गया है। रिपोर्ट किया गया है कि सफाई कर्मचारियों की कटौती के बाद कुछ कर्मचारियों को अपना टॉयलेट पेपर लाना पड़ा। यह विवरण केवल विचित्रता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह संकेत देता है कि लागत घटाने की नीति जब संचालन की न्यूनतम जरूरतों से भी टकराती है तो संगठन का भरोसा और क्षमता दोनों कमजोर होते हैं। बड़ी तकनीकी कंपनियां केवल कोड या ब्रांड से नहीं चलती, उनके पास सुरक्षा प्रणालियों, सामग्री समीक्षा, विज्ञापन, कानूनी अनुपालन और अवसंरचना का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ होते हैं। अचानक निकाले गए लोगों के साथ यह संस्थागत ज्ञान भी चला जाता है। पुस्तक के अनुसार, नेतृत्व की सार्वजनिक नाटकीयता और अंदरूनी अनिश्चितता ने कर्मचारियों को लगातार बदलती प्राथमिकताओं के बीच काम करने पर मजबूर किया। इससे प्रबंधन का एक व्यावहारिक सबक निकलता है, संकट में गति उपयोगी हो सकती है, लेकिन निर्णयों के परिणाम समझने वाली टीमों को खत्म कर देना गति को टिकाऊ निष्पादन में नहीं बदलता। चौथा, मालिक की ऑनलाइन पहचान और कंपनी शासन का असामान्य विलय। कैरेक्टर लिमिट मस्क को केवल बाहरी खरीदार के रूप में नहीं प्रस्तुत करती, वे अधिग्रहण से पहले ही ट्विटर के सबसे प्रभावशाली उपयोगकर्ताओं में थे, जिनके करोड़ों अनुयायी थे। यही व्यक्तिगत मंच उपस्थिति बाद में कंपनी शासन से मिल जाती है। मस्क का ट्विटर मुख्यालय में सिंक लेकर प्रवेश करना और उसे सार्वजनिक रूप से साझा करना इस विलय का प्रतीकात्मक उदाहरण है। ऐसे क्षण ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन पुस्तक का गहरा बिंदु यह है कि जब मालिक की व्यक्तिगत ऑनलाइन शैली कंपनी के निर्णयों का प्रमुख माध्यम बन जाए, तो औपचारिक संचार पूर्वानुमेय नीति और जवाबदेही दबाव में आ जाते हैं। कर्मचारी, ग्राहक और उपयोगकर्ता यह समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं कि किसी घोषणा को मजाक, संकेत, प्रयोग या अस्थायी नीति के रूप में कैसे लें। सार्वजनिक मंचों में यह अस्पष्टता विशेष रूप से असरदार होती है, क्योंकि नीतियों का छोटा परिवर्तन भी लाखों लोगों के व्यवहार को बदल सकता है। पुस्तक इस मामले को व्यक्तित्व की आलोचना तक सीमित नहीं रखती, यह कॉर्पोरेट शासन का सवाल उठाती है कि क्या बोर्ड, वरिष्ठ प्रबंधन और स्पष्ट प्रक्रियाएं किसी एक मालिक की आवेगपूर्ण शक्ति पर सार्थक नियंत्रण रख सकती है। अंत में ट्विटर से एक्स तक सूचना व्यवस्था और जवाबदेही का व्यापक प्रश्न। पुस्तक का दायरा कंपनी के वित्तीय मूल्य या कर्मचारियों के अनुभव तक सीमित नहीं है। ट्विटर, जिसे बाद में एक्स नाम दिया गया, राजनीतिक बहस, पत्रकारिता, संकट सूचना और सांस्कृतिक संघर्षों को प्रभावित करने वाला मंच था। इसलिए उसके स्वामित्व और संचालन में बदलाव का असर मंच के बाहर भी पड़ता है। लेखकों के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि वायरल विचारों और तीव्र भावनाओं वाली दुनिया में यह शक्ति किसके पास होनी चाहिए कि किसे सुना जाए और कौन से नियम लागू हो। यह प्रश्न किसी एक विचारधारा का समर्थन करने से अधिक मंच शासन की जवाबदेही से जुड़ा है। निजी मालिक को अपने उत्पाद में बदलाव करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन जब उत्पाद सार्वजनिक बातचीत की आधारभूत संरचना जैसा काम करता है, तो उसके फैसलों के सामाजिक परिणाम भी होते हैं। पुस्तक में घृणास्पद भाषा और गलत सूचना को लेकर चिंताएं इसी व्यापक संदर्भ में आती हैं। यह पाठक को तकनीकी मंचों को साधारण निजी वेबसाइट मानने के बजाय प्रभावशाली सूचना संस्थानों की तरह देखने को कहती है। साथ ही यह याद दिलाती है कि विकल्पों जैसे विकेंद्रीकृत नेटवर्क या नए सामाजिक मंचों की ओर उपयोगकर्ताओं का जाना केवल उत्पाद पसंद नहीं, भरोसे और समुदाय की खोज भी हो सकता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक प्रौद्योगिकी उद्योग, कॉर्पोरेट कानून, डिजिटल मीडिया, राजनीति या नेतृत्व में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। मस्क के प्रशंसकों और आलोचकों दोनों के लिए इसका मूल्य किसी तैयार निर्णय को दोहराने में नहीं, बल्कि अधिग्रहण के पीछे की प्रक्रियाओं को विस्तार से देखने में है। पाठक समझ सकते हैं कि बोर्ड की जिम्मेदारी, विलय अनुबंध, ऋण अंबाद, ऋण कर्मचारियों का संस्थागत ज्ञान, सामग्री संयम और मालिक की सार्वजनिक छवि एक ही संकट में कैसे जुड़ते हैं। प्रबंधकों के लिए यह तेज लागत कटौती और अनिश्चित संचार के जोखिमों का व्यावहारिक अध्ययन है। पत्रकारिता और नीति के विद्यार्थियों के लिए यह उदाहरण है कि निजी स्वामित्व वाले मंच भी सार्वजनिक जीवन की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। समान विषय की अनेक पुस्तकों में या तो मस्क के व्यक्तित्व या ट्विटर के उत्पाद इतिहास या मुक्त अभिव्यक्ति की वैचारिक बहस पर मुख्य जोर होता है। कैरेक्टर लिमिट की अलग पहचान इसकी रिपोर्टिंग आधारित अंदरूनी और बहुस्तरीय दृष्टि है। यह सौदे से पहले के दबावों, कानूनी संघर्ष, मुख्यालय के भीतर की अव्यवस्था और मंच की सामाजिक भूमिका को एक साथ रखती है। शीर्षक का निष्कर्षात्मक स्वर पुस्तक के आलोचनात्मक रुख को दर्शाता है, इसलिए पाठक को लेखकों के चयन और दृष्टिकोण को भी जागरूकता से पढ़ना चाहिए। फिर भी एक प्रभावशाली डिजिटल मंच के स्वामित्व परिवर्तन को समझने के लिए यह हाल के तकनीकी इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं केट कॉन्गर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।